ओम शांति। हम सभी बाबा के चुने हुए ब्राह्मण बच्चे हैं और हम सभी का लक्ष्य क्या है? क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ना सर्वगुण संपन्न माना देवता बनना ना। तो पहले बीच में क्या बनना पड़ेगा? फरिश्ता। तो पहले तो एक्चुअली से कहें तो मनुष्य से देवता बनने का विश्व, ये जो है ब्रह्मा कुमारी इसका विश्वविद्यालय मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाबा हमें यहाँ पढ़ाते हैं। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम सभी, आप सभी देवता बनना चाहते हैं? चाहते हैं? जो चाहते हैं वहां थोड़ा अच्छे से सीधा सीधा बनो। वेरी गुड। तो देवता की पांच जो विशेषताएं बताई हुई हम सब जानते हैं, कौन कौन सी है? पहली सर्वगुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण, फिर संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर। तो ये जो सर्वगुण संपन्न वाली बात है, कितने गुण होते हैं? गुण कितने होते हैं? कितने? 36 गुण होते हैं ना। बाबा ने पीछे एक मुरली में याद है आपको, संध्या की मुरली थी शायद, अगर आप किसी के अंदर 35 गुण भी हो तो बाबा क्या क्या देखता है? एक गुण देखता है ना उसके अंदर, बाप को पहचानने का गुण देखता है ना। तो 36 गुण है ना, 36 दैवी गुण। तो हम रोज चेक करते हैं कि 36 में से हमारे अंदर कितने आ गए दैवी सर्वगुण संपन्न माना। हम 36 के 36 गुण रोज अपने अंदर देखें, एक चेकलिस्ट बना लें कि इसमें आज मेरे अंदर ये गुण कितना आ गया। 36 पूरे हुए नहीं हुए? 34 तो नहीं है, 30 तो नहीं है, 36 पूरे हो गए? जिनमें 36 पूरे हो गए वहां छोटो, तो 36 तो नाम याद, नाम भी याद नहीं होंगे ना आपको, है ना? याद है नाम? अच्छा चलो, मैं वैसे आपको आज ना वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा, रूढ़ियान करेंगे कैसे 36 गुणों को, क्योंकि मैंने कैसे समझा, बाबा ने कैसे मुझे समझाया कि 36 गुण क्योंकि सीक्वेंस वाइज आते हैं ना, कैसे आते हैं वो आपसे शेयर करेंगे, है ना। 36 गुण संपन्न, संपन्न माना 36 के 36 गुण हमारे अंदर आ जाना, और 16 कला माना हर गुण में 100%। 16 कला का मतलब ये नहीं कि खाना बनाने की कला, संगीत करने, गाना गाने की कला, ऐसे वो नहीं। 16 कला का अर्थ क्या है? 16 कला माना 100%, हर गुण 100% हो जाए ताकि कला के माफिक बन जाए, राइट। वो एक कला बन जाए, जैसे मधुरता जैसे है, मधुरता मतलब परफेक्शन वाली मधुरता। ये नहीं कि मेरे को किसी ने 10 बार गाली दी तो मैंने 10 बार तो मुस्कुराता रहा, मीठा बोलता रहा, 11वीं बार गाली दी तो टॉलरेट नहीं हुआ, तो क्या हुआ? इसे 100% कहेंगे? तो 100% मतलब मधुरता, माना सोच में भी मधुरता, देखने में मधुरता, सुनने में मधुरता, बोलने में मधुरता, खाने में भी मधुरता, देखने में, मतलब हर चीज में, हमारी चाल में भी मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में मधुरता, है ना, हमारे हर व्यवहार, हर चीज में व्यवहारता 100% होनी चाहिए। कोई भी गुण अगर हम लेते हैं, वो क्या गुण सचमुच में मेरे 100% है मेरे अंदर? तो 16 कला का अर्थ यह है, क्योंकि जब हम, अगर हम 75% बनते हैं, 14 कला ही पूरा होता है, तो मतलब 75%, अगर वो गुण मेरे अंदर 75% आया तो कहां जाएंगे हम? कहां जाएंगे? त्रेता में जाएंगे। और अगर 50% रह गया तो फिर तो द्वापर में एंट्री हो जाएगी, है ना। तो हमें वो गुण 100% चाहिए, राइट। और फिर जब 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे तो संपूर्ण निर्विकारी, आपस में कनेक्शन है इनका, पहले सर्वगुण संपन्न, फिर 16 कला माना 100% हर गुण में, और फिर जब संपूर्ण हो जाएंगे हर गुण में तो कला के माफिक दृष्टि, तो हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। संपूर्ण निर्विकारी माना देवहान का अंश भी नहीं रहेगा, किसी तरह का भी कोई अंश भी होता ना, कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका अंश वंश, आलस्य अलबेलापन, दूसरों में अवगुण देखना, बदला लेने की भावना रखना, है ना, किसी पे शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, चिंता भी नहीं रहेगी, जरा डर भी नहीं लगेगा, किसी बात में प्रेशर भी, किसी बात का प्रेशर भी नहीं होगा ना, जल्दी किसी बात की, जल्दी टाइम की, जल्दी काम की, जल्दी मेरे हिसाब से ही काम होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा, राइट। और फिर जो है ईर्ष्या द्वेष भी किसी से नहीं होगी, कंपटीशन कंपैरिजन, मतलब देवभान का भी अंश ना रहे। जब ऐसी स्थिति होगी देवभिमान देवभान का अंश भी नहीं, किसी विकार का अंश भी नहीं रहेगा, अर्थात विष्णु स्थिति जब होगी। विष्णु माना, विष्णु का माना क्या होता है, विष्णु माना जिसमें जिसकी प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी न रहे, मतलब विष का अंश भी न रहे, किसी विकार का अंश भी न रहे। हमारी प्रवृत्ति कौन सी है, हमारी प्रवृत्ति कौन सी होती बताओ, हर आत्मा की प्रवृत्ति कौन सी है, हर आत्मा की प्रवृत्ति बुद्धि है ना, मन है, संस्कार है। मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, किसी विचार भावना में भी और मेरे किसी भी आदत में, संस्कार में विष का अंश भी न रहे। और फिर इस शरीर के साथ, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ है, तो मेरी आंखों में, नाक में, कान में, मुख में, त्वचा में, किसी भी अंग में, शरीर के रोम रोम में भी किसी विष का अंश न रहे, किसी विकार का अंश भी न रहे, राइट। ऐसी जब मेरी स्थिति बनती है तो हम ऑटोमेटिक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, हर चीज में मर्यादित, हमारी सोचने की मर्यादा, देखने की मर्यादा, पढ़ने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, चलने की मर्यादा, हर चीज की मर्यादा, व्यवहार करने की मर्यादा, हम 100% मर्यादित है ना। क्योंकि मर्यादा कहां बिगड़ती है, जहां पे देवभान और देवभिमान होता है, जहां कोई विकार होते हैं वहां मर्यादा बिगड़ती है, और जहां है ही 100% हम संपूर्ण निर्विकारी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मर्यादित व्यवहार है ना। और जब मर्यादित व्यवहार होता है तो हम अहिंसा परमो धर्म, अर्थात एक्चुअली ये हमको अभी बनना है, सर्वगुण संपन्न या सत्युग में जाके बनेंगे, वहां जाके हम फरिश्ता बन के जाएंगे, वहां अपने आप बन जाएंगे, ऐसा है क्या? हमको ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता यहां बनना है, यहां बनना है कि वहां बनना है, यहां बनना ना। तो यहां ही हमको अभी सत्युग में, एक्चुअली मैं सोच रहा था, मैं एक बार चिंतन चल रहा था, सत्युग में हमको सहन करने की शक्ति आवश्यकता होगी क्या, सत्य को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी, यथार्थ निर्णय करने की आवश्यकता होगी, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति की आवश्यकता होगी, समेटने की शक्ति की आवश्यकता होगी, सहन करना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, नहीं वहां तो इन शक्तियों की आवश्यकता ही नहीं है, है ना। वहां तो है ही सब कुछ सत्य है, तो परखने की क्या आवश्यकता ही नहीं है, विचार ही नहीं चलते हैं। बाबा ने परसों मुरली में कहा ना, तरसों बाबा ऐ भोगता है सोचता है, तो हम भी असोचता जैसे बन जाएंगे, जब कोई होना होगा तभी हमारे संकल्प आएगा, व्यर्थ संकल्प तो आएगा नहीं, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो क्या 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 हमें निर्णय करना, निर्णय भी नहीं करना, ऑटोमेटिक वही होना, जो होना है वही हम बोलेंगे, वही करेंगे, वो हो जाएगा। तो हमारी स्थिति वहां पर ऐसी होगी, है ना। वहां ज्यादा दैवी गुणों की ज्यादा, जो मैं दैवी गुण हम बात करेंगे, वहां भी वो आवश्यकता होंगी क्या, नहीं ऑटोमेटिक होंगे ही होंगे ना, है ना। तो हमको यहां बनना है, यहां हमको पुरुषार्थ करके वो परफेक्शन ला करके तब हम सत्युग में एंटर कर सकते हैं। ये सत्युग में जाने का पासपोर्ट है, वीजा है, ये दैवी गुण क्या है, सत्युग में जाने की वीजा है। कई बार हम लोग बात करते हैं ना, जैसे भी सूक्ष्म वेतन में जाना है, परम धाम में जाना है, उसका पासपोर्ट क्या है बताओ, कोई बताएगा, सूक्ष्म वेतन में जाने का पासपोर्ट क्या है, हाँ सूक्ष्म वेतन में जाने का पासपोर्ट है मुरली, ठीक है। ये जो मुरली है ना बाबा की, ये मुरली मेरे जीवन में समा गई ना, ये मुरली मेरे, क्योंकि ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण ही जा सकते हैं ना सूक्ष्म वेतन में, कौन जा सकते हैं, ब्राह्मण। और ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि में मुरली हो, जिसकी बुद्धि बेहद की हो, तो जिसकी मुरली, जिसकी बुद्धि में सारा टाइम मुरली बजती रहती है, बाबा बाबा और बाबा की मुरली बजती रहती है, वही तो सूक्ष्म वेतन में जा सकता है। तो ये मुरली है पासपोर्ट सूक्ष्म वेतन में जाने की, ठीक है, राइट। इसलिए पासपोर्ट जेब में रखते हैं, कहां रखते हैं, घर में रखते हैं, इसलिए पासपोर्ट जेब में रखते हैं, पासपोर्ट जेब में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा जेब में रखता हूं, सोने के समय बेड के साथ, बेड में ना सिरहाने के पास रखा रहता है पासपोर्ट ना, अचानक रात में भी कहीं जाना पड़े सूक्ष्म वेतन में, तो परमधाम जाना पड़े तो मुरली पासपोर्ट तो साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पासपोर्ट। वीजा कौन सा है, खाली मुरली से काम चलेगा क्या? पासपोर्ट कौन सा है? यस, पासपोर्ट है पवित्रता। जितना हम बाबा की निरंतर याद से अपनी मन बुद्धि को पवित्र बनाते जाते हैं, शुद्ध बनाते जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन शुद्ध संकल्पों की दुनिया है, तो वहां जाने के लिए हमको क्या करना पड़े? पवित्रता, याद से, निरंतर याद से हमारी वो स्थिति बनेगी जिस बुद्धि में मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वो है संपूर्ण पवित्रता। जिसकी ऐसी स्थिति होगी वह सूक्ष्म वतन में जा सकता है। और फिर टिकट कौन सी है जाने की? टिकट भी चाहिए ना। अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना हो तो पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, और फिर टिकट भी चाहिए। टिकट कौन सी है बताइए? दिल्ली वाले तो बहुत इंटेलिजेंट होते ना, बताइए, हाई आईक्यू वाले ना। वो है दिव्य गुण। जितना दिव्य गुण, जितना सर्वगुण संपन्न होंगे ना, जितना दैवी गुणों से भरपूर होंगे ना, उतना अच्छी अच्छी टिकट। टिकट कौन सी? अच्छी टिकट कौन सी होती है? एक तो इकोनॉमी क्लास की होती है ना, एक क्या होती है, एक डिलक्स होती है, एक बहुत बढ़िया होती है, सोने की सीट भी होती है बकायदा उसमें। विदेश के प्लेन्स होते हैं ना, उसमें सोने का सीट पूरा कायदा, पूरे सोने का भी होता है पूरा। आराम से जैसे अपने कमरे में सोते हो ना बेडरूम पे, वैसे ही वहां सो सकते हो, है ना। तो कौन सी क्लास की टिकट लेनी है आपको, है ना। तो दैवी गुण संपन्न, हर गुण हमारे अंदर संपन्न जितनी होगी ना, तो वो टिकट है ऊपर जाने की। जितना हमारे अंदर सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, बेहर की वैराग्य वृत्ति, जैसे जैसे दैवी गुण हमारे अंदर आते जाएंगे ना, हमारी वो टिकट, हमें उसी क्वालिटी की टिकट मिलेगी। एक सूक्ष्म वेतन में जाने की टिकट है, एक सूक्ष्म वेतन में बाप दादा की गोद में डायरेक्ट पहुंचने की टिकट है, और एक तीसरी टिकट और भी है, वो कौन सी है? बाबा की गोद में समाने की टिकट है। एक तो गोद में बैठने की है, और एक गोद में समा जाने की टिकट है। तो कौन सी टिकट चाहिए? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण वाली टिकट है ना, संपूर्ण निर्विकारी वाली टिकट है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म की टिकट है ना। तो वो टिकट हमें तब मिलती है। और वहां पर रहने के लिए क्या चाहिए? वहां कुछ देर रहना हो तो क्या क्या चाहिए बताइए, कौन बताएगा? बोली, नहीं तो क्या करेंगे? मान लीजिए आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए, टिकट आपके पास है, कि तो आपके पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? होटल में रहना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, वहां कुछ करना पड़ेगा, वहां घूमने जाना पड़ेगा। तो पैसे चाहिए ना, चाहिए मनी, चाहिए ना मनी, चाहिए मनी। कहां से आएगी मनी? कहां से आएगी मनी? अगर आपने बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा की होगी ना, बेहद की निस्वार्थ भाव से सेवा की होगी, सच्ची दिल से सेवा की होगी ना बाबा की, तो दुआएं हैं वो मनी, है ना। जो दुआएं मिलती है ना आत्माओं से, जब उनको संतुष्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं सच्ची दिल से, तो वो दुआएं हमको ऊपर रखती हैं लंबा समय। तो हम क्या करते हैं, सूक्ष्म वतन में गए, परम धाम में गए, थोड़ी देर, एक दो पांच दस सेकंड रुकते हैं, फिर वापस आ जाते, रह नहीं सकते वहां पर, है ना। जिस प्लेन में गए उस अगली फ्लाइट से नीचे आ गए, या वही फ्लाइट वापस जा रही है, एक आधे घंटे के बाद वापस आना, पैसे ही नहीं ठहरने के, है ना। नहीं तो ये चारों सब्जेक्ट हो गए, नहीं हो गए? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा हो गए ना। ज्ञान, योग, ज्ञान है पासपोर्ट, योग है वीजा, धारणा है टिकट, और सेवा है वहां रहने की मनी, ठीक है। तो जितना ऐसे ही, अब मैं ये बात कर रहा था आपसे कि ये जो हमारे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदम। अहिंसा परमोदम में क्या होता है? किसी प्रकार की हिंसा नहीं। जब काम विकार छोड़ते हैं ना, तो लाइट का ताजा जाता है। यहां की बात है, ये सब यहां की बात है, सत्युग में नहीं इस चीजों की जरूरत है, हमें यहां बनना है। जब काम विकार बना, देह की दृष्टि, किसी को भी देह की दृष्टि से देखना, मेल फीमेल की बात नहीं खाली, किसी को भी देहभान की दृष्टि से देखना, चाहे शक्ल चाहे अकल, बात शक्ल की भी नहीं है, अकल किसी के प्रभावित होना, किसी से प्रभावित हो जाना, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव, इन चारों बातों से परे जो हो जाता है ना, उसका लाइट कट आ जाता है। और जब हम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये चार विकार और है, जब चारों को चार, ये भी चारों हिंसाएं हैं, काम विकार सबसे बड़ी हिंसा है, क्रोध भी हिंसा है, लोभ भी हिंसा है, लोभ भी क्या है, किसी को हक का, किसी के हक को मारना, ये भी तो हिंसा है ना, मोह किसी की स्वतंत्रता को खत्म कर देना, अपने बच्चे की या किसी भी जिससे भी मोह हो गया उनकी वो फ्रीडम खत्म होगी ना उनकी, तो वो भी तो हिंसा है ना। अहंकार, अपने अहंकार ईगो से किसी को हर्ट करना, वो भी तो हिंसा है ना, नंबर वाइज कम है किंतु है। तो क्रोध लोभ मोह अहंकार वो भी हमारे अंदर जब खत्म कर देते हैं अंश सहित, तो वो हमारा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजा जाता है। तो आप जहां भी हैं, जरूरी कि आप मधुबन में हैं, जो कहां पर भी आप हैं, जंगल में भी बैठे हैं, तो भी आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी संकल्प कर रहे हैं, जो भावना आपके अंदर है, वो सारे विश्व में जो आत्माएं याद कर रही हैं बाबा को, भगवान किसी रूप में भी, उन तक वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं, उनको टच होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा यहां थे, माउंट आबू मैंने जा सकता, दिल्ली में चले गए, बॉम्बे में चले गए, बाबा बहुत ज्यादा कहीं जगह नहीं जान नहीं गए हैं, तो बाबा ने, क्योंकि पर बाबा का सारे विश्व में है ना आज भी साक्षात्कार होते हैं, तो वो क्योंकि उनकी उनकी स्थिति वैसी थी, उनके अंदर संपूर्ण निर्विकारी, किसी विकार का आंशिक तक भी नहीं था, टोट संपूर्ण अहिंसक थे वो ना, कोई कितना भी उनके लिए गलत करे, कितना भी कहे, कुछ भी गलत बोल दे, आपको ब्रिज कोठी का याद होगा ना, ब्रिज कोठी के पीछे एक साधु था जगदीश भाई, जब गए तो वो रोज उनको बाबा ने पीछे जाकर कहा, जब लास्ट में जब उसको सबसे मिल लिए तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुमसे ना सबसे मेरे जो परम मित्र है उससे मिलाना भूल गया आपको, तो बाबा ने कहा आपका परम मित्र कौन से, आप जगदीश भाई कौन से आपका परम मित्र है, तो बाबा उसको ब्रिज कोठी के पीछे ले गए, वहां शमशान घाट है ना माउंट आबू में, अभी भी ऐसा ही है, तो शमशान घाट है वहां पर, तो वहां एक साधु रहता था, और वो सुबह उठते ही बाबा को गाली देना शुरू करता था, जोर चिल्ला चिल्ला के रोज जोर से, तो बाबा उनको जैसे जैसे फिर बाबा को देखा, फिर उसने गाली देनी शुरू कर दी उस साधु ने, है ना, और जोर जोर से चिल्ला के गाली देता था, और बाबा सबसे पहले कहते जब भी भोग लगने के बाद सबसे पहले खाना उसको भिजवाते थे कि मेरे परम मित्र को भोजन दे के आओ, है ना, कपड़ा सर्दी का कपड़ा उसको भिजवाते थे, गर्मी का कपड़ा उसको भिजवा, हर चीज उसको भिजवाते थे यज्ञ की, कि मेरे परम मित्र को देके आओ, है ना। तो बाबा ने कभी भी, मतलब वो जो हालांकि इतना गलत, बाबा के बच्चे बोलते थे बाबा इसको हम यहां से भगा दें क्या, आप अभी कहो इसको भगा देंगे, इसके सब झोपड़ी वोपड़ी सब उखाड़ के फेंक देंगे, नहीं बच्चे नहीं, बाबा का बच्चा है, प्यारा बच्चा है, है ना। तो ऐसी 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 को बोलते हैं संपूर्ण हिंसक, है ना। तो ऐसा बच्चा जो सबके प्रति एक निर्माण है ना, वो ऐसे बच्चे को वो संपूर्ण मतलब जो है विश्व कल्याणकारी है, क्योंकि जिसको जरा भी क्रोध है, जरा भी लोभ मोह अहंकार कांश है, वो विश्व कल्याण की सेवा नहीं कर सकता है, वो विश्व कल्याण नहीं कर सकता जरा भी अंश भी बाकी है तो, राइट। तो चलिए हम चलते हैं, कैसे हम बने संपूर्ण निर्विकारी, है ना, या सर्वगुण संपन्न बने। सबसे पहले तो हमें ब्राह्मण, हम पहले तो मनुष्य से ब्राह्मण बनने की बात है, हम देखेंगे मनुष्य से हम सच्चे ब्राह्मण बने हैं कि नहीं बने, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की बात है, फिर देवता बनने की बात है। तो पहले हम देखें मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फर्क है, हम सभी पहले मनुष्य थे अभी ब्राह्मण बने, क्या फर्क है, अभी पहले कपड़े कलरफुल थे अभी सफेद हो गए ऐसे, हाँ जी, अच्छा पहले अमृत वेला नहीं करते थे अभी करते हैं, अच्छा चलो ठीक बात, पहले नहाया नहीं करते अब नहाते हैं, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत सुंदर, अभी चलो मैं बताता हूँ, नहीं वो तो सब बहुत अच्छा बताया आपने, ये अच्छी राइट बात है, कि तो एक मैं बताता हूँ आपको, जब मनुष्य थे तो हम हमारे हमारी बुद्धि और मन में क्या रहता था, देह भान, सारा समय देह का भान रहता था, मैं देह हूं, सारा दिन अपने को देह दिखेगा, देह अभिमान, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मतलब रोल कॉन्शियसनेस रहती थी, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, भिन्न भिन्न जो भान, भिन्न भिन्न जो रोल थे ना समाज में हमारे, उसका भान हमेशा रहता था, हमारी बुद्धि में ये भरा रहता था, मन में भी ये भरा रहता था, और देह के संबंध संपर्क भरे रहते थे। क्या भरे रहते थे? मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी मेरी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पति, मेरा पत्नी, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, नहीं यही तो भरा हुआ था, नहीं और क्या भरा हुआ था? देह के पदार्थ, मकान, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे कपड़े, नहीं मेरी चीजें, है ना, ये तो भरी थी बुद्धि में, मन में ही भरा हुआ था। और देवभान के स्वभाव संस्कार, देवभान के स्वभाव मन नेचर, देवभान के नेचर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और देवभान के संस्कार क्या है? आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में अवगुण देखना, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष। इनके फिर 10-10 बच्चे और भी हैं, वैसे उनका नाम मैं नहीं लेता हूं, फिर तो क्लास पूरी हो जाएगी, है ना। तो यही भरे हुए थे ना हमारे अंदर सारे, है ना। तो ये सारा दिन मनुष्य की बुद्धि में यही भरा रहता है। ये हद की चीज है ना, हद माना पैदा हुई मर गई, आज नहीं कल हो जाए, कल आई फिर थोड़े दिन बाद खत्म हो गई, परमानेंट नहीं है ये चीज, है ना। देह भान, देह आ जाए कल नहीं रहेगी, देह अभिमान, आज रोल है डॉक्टर है कल नहीं रहेंगे, है ना, कल रोल बदल जाएगा, आज पति पत्नी आज है कल नहीं रहेंगे, माँ बाप आज है कल नहीं रहेंगे, भाई बहन आज है कल नहीं रहेंगे, बच्चे आज है कल नहीं रहेंगे, है ना, ये परमानेंट नहीं है, है ना, विनाशी है ना, अविनाशी नहीं है, राइट। देह के संबंध संपर्क आज है कल नहीं रहेंगे, देह के पदार्थ आज है कल नहीं रहेंगे, देह भान के स्वभाव आज हैं बहुत स्ट्रांग है किंतु हो सकता कल ना रहे, देह भान के संस्कार आज हैं किंतु कल ना रहे, तो ये परमानेंट नहीं है, ये हद है, हद इनकी हद, हद माना जो जन्म हुआ मर गए, आज पैदा हुए कल खत्म हुए। और मनुष्य ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण माना ब्रह्मा जैसे शब्द ना, ब्रह्मा माना बेहद की माँ, ब्रह्मा माना बेहद माँ, बेहद की माँ से ब्राह्मण शब्द कैसे बना है? ब्राह्म माना बेहद, बेहद की बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि में बेहद भरा हुआ है। बेहद माना क्या? ये बाबा का ज्ञान, ये बाबा की मुरली, ABCD, सार रूप में ज्ञान क्या है? ABCD, ज्ञान माने सत्य की समझ, बाबा ने हमें समझाया है कि हम कौन है, मेरी बुद्धि में क्या भरा हुआ है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और सृष्टि रूपी ड्रामा का क्या राज है, मेरी बुद्धि में यह भरा हुआ है ना, आपकी बुद्धि में यह भरा हुआ है। ABCD, ए फॉर आत्मा, बी फॉर सी फॉर कनेक्शन माने संबंध, और डी फॉर ड्रामा। तो मेरी बुद्धि में क्या भरा हुआ? मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव के संतान हूं। मेरे मीठे शिव बाबा प्राणव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सरल संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं। कौन कौन से कौन कौन संबंध दे रहे हैं? माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु माना बड़ा भाई या बड़ी बहन, सखा माना दोस्त, साजन सर्जन और बच्चा। मुख्य 9 संबंध है, संबंध तो हर एक है, और ये संबंध हर समय है, हर जगह है, हर कार्य में है, और हर संबंध। तो ये 4 बातें इसकी हैं कि संबंध की, बाबा से मेरे संबंध की 4 बातें हैं। कौन कौन सी? हर समय, हर जगह, हर स्थान पर, और सर्व, कहीं भी हो आप, जंगल में हो, बाथरूम में हो, जहां कोई भी नहीं हो सकता आपके साथ, वहां भी बाबा आपके साथ है, हर समय है, हर जगह है, हर कार्य में है, और सर्व संबंध से आपके साथ है। आपको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर के रूप में बाबा चाहिए साथ है, दोस्त के रूप में चाहिए बाबा साथ है, साधन के रूप में साथ है, सज्जन के रूप में चाहिए साथ है, बच्चे के रूप में चाहिए है, माँ के रूप में चाहिए है, बाप के रूप में चाहिए है, टीचर के रूप में है, गुरु के रूप में, बड़े भाई बहन के रूप में है साथ, हर समय जिस समय। तो एक एक संबंध के गहराई से अनुभव की अथॉरिटी बनने की आवश्यकता है। अभी लौकिक संबंध नहीं, हमें उस बाप को, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक एक, मुझे मां चाहिए तो बाबा कैसे, शिव बाबा कैसे मां के रूप में मेरी पालना दे रहा है। याद है चार हफ्ते पहले की मुरली क्या बताया था बाबा ने, बाबा ब्राह्मण जन्म देते ही हमें क्या मिल जाता है, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि की गिफ्ट। दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलते ही हमको ये दो गिफ्ट मां के रूप में बाबा देता है हमको, कौन कौन सी, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि रूपी गिफ्ट। पहले पहले ये मां के रूपी, मां की गिफ्ट है। बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, दिव्य बुद्धि, जो दृष्टि दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट है ना, एक सेकेंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर क्या है बताओ, बोलो सूक्ष्म शरीर क्या है, हैं जी क्या कह रहे हैं, हाँ मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। दिव्य बुद्धि मिले मुझे, ठीक है, बाबा से दिव्य बुद्धि मिल गई, अब मन बुद्धि तो यहां पर है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, हैं जी क्या कह रहे हैं, समझा नहीं मैं, स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में तो आप शिव बाबा की आवश्यकता नहीं ना, आपको संस्कारों में रहेगा, संस्कारों में साथ रहेगा। तो ये जो है सूक्ष्म शरीर जो है, बेसिकली हमारा मन हमारा सूक्ष्म शरीर है जो सारे शरीर में फैला हुआ है, मन सारे शरीर में फैला रहता है ना, और सूक्ष्म शरीर हमारा, हम हमारा बना बनाया कि हमें बनाना पड़ता है, आपके घर में आटा है, पानी है, गैस है, तवा भी है, तो रोटी बनानी पड़ती है कि अपने आप बन जाती है, सब्जी बनानी पड़ती है बन जाती है अपने आप, बनानी पड़ती है। अभी हमारा सूक्ष्म शरीर कैसा है, दो मिनट चलो बाबा को, ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे बुद्धि की, बात कर रहे थे ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले है ना, जिनकी बुद्धि में बेहद भरा हुआ है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरे उसे संबंध, एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन गए, उसको यूज करके बाबा को हर संबंध से यूज किया है, हर समय यूज किया है, हर कार्य में यूज किया है, हर स्थान पे यूज किया है। तो ऐसे अनुभव की अथॉरिटी जो बन जाते हैं ना, तो क्या बन जाते हैं, वो ड्रामा के पट्टे पर अटल रहते हैं। ड्रामा क्या है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया है, अभी भी बजा रही है और भविष्य में बजाती रहेगी। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और क्या है, प्रिंसिपल एक्टर भी है और स्क्रिप्ट राइटर भी है, और डायलॉग राइटर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है ना, गीतकार भी है, और क्या है, फोटोग्राफर भी वही है ना, सब कुछ वही करता है ना, डायलॉग भी उसके द्वारा लिखे गए हैं, किसके अनुसार, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने, और उसके अनुसार हर आत्मा को, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार शिव बाबा ने हर आत्मा को अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, अभी भी दे रहा है और भविष्य में भी देता रहेगा। तो अभी तक जो कुछ हुआ ठीक हुआ, गलत हुआ कि ठीक हुआ है, जो ऐसा समझते हैं हमारे साथ सब कुछ ठीक हुआ है अभी तक, हाथ उठाओ, सभी समझते हैं, किसी ने आपकी गाली, रोज गाली देते हैं आपको, इंसल्ट करते हैं रोज, धोखा मिला है, बहुत लोगों ने धोखा दिया है, अच्छा हुआ है, हाँ क्या कह रहे हैं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हुआ है। बाबा ने याद है एक बार कहा था, एक माताओं को पति पीटते हैं ना कई बार उनको, तो माँ बाप, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा पति तुम्हें पीटता है, क्यों पीटता है, क्यों, पिछले जन्म में आपने उसको पीटा हुआ है, इसलिए वो ब्याज के साथ पीटता है ना, है ना। आपको ये भी, जैसे बाबा ने कहा कि बाबा, एक मैं हिसाब बताता हूँ, छोटा कर्मों का हिसाब किताब बताता हूँ, कर्मों के हिसाब के नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100 साल पहले अगर आपने किसी से 10 रुपये उधार लिया था अपने दोस्त से, और आप उसको बिना चुकाए मर गए, शरीर छोड़ दिया, तो इस जन्म में क्या होगा, वो दोस्त आपका, आपके बेटा बनेगा, या आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा या माँ बनेगा या भाई बनेगा या कुछ ना कुछ ऐसा संबंध ही बनेगा और उसको उसको वापस आपको 10 रुपए देना पड़ेगा और साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज कितना होता है 100 साल का? 100 साल का ब्याज हमने एक बार लगाया था, वो ब्याज बनता है 4,18,35,040 रुपए बनता है। सुना, 10 रुपए का ब्याज 100 साल का। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा लेना साहब, बताएगा आपको ना, है जी? परसेंट लगाया देखो, मैं बताता, चलो मोटा मोटा बता देता हूं, ऐसे ज्यादा तो नहीं। 1917 से लेकर 1947 तक 3 साल में पैसा डबल होता था, बैंक तो थे नहीं, 3 साल में पैसा डबल होता था। 47 से 67 तक 4 साल में पैसा डबल होता था। 67 बैंक आए, नेशनलाइज बैंक हो गए। फिर 67 से 87 तक 5 साल में डबल होने लगा और 87 से लेकर अभी तक अब 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल में डबल होता है। अब आप हिसाब लगा लेना अपने आप, कितना इतना ही आएगा। सिंपल ब्याज, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, चक्रवृद्धि नहीं है, ठीक है? तो इतना ब्याज है। अगर 100 साल पहले मान लो किसी ने आपको, आपने किसी को 2 गाली दी थी, कितनी गाली मिलेगी इस जन्म में? वो आपकी सास बन के आएगी, ननद बन के आएगी, तो कितनी गाली खानी पड़ेगी बताओ? या पति बन के आएगा, या कोई कुछ ना कुछ बन के आएगा, पत्नी बन के आएगा, तो क्या हो, कितनी गाली खाओगे? सुबह शाम खाना खाने के साथ साथ गाली भी खानी पड़ेगी, नहीं? 2 बार इंसल्ट की थी 100 साल पहले, कितनी बार इंसल्ट होगी इस जन्म में? आपने 1 बार धोखा दिया था, इस जन्म में कितनी बार धोखा खाना पड़ेगा? ये है कर्मों का हिसाब किताब। इसलिए अभी तक जो कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, राइट? तो कभी नहीं कहना मेरे साथ गलत हुआ ना? किसी ने आपका प्लॉट काबू कर लिया 1 करोड़ का, ठीक किया गलत किया? आपने भी जरूर काबू किया था, ठीक है? इस जन्म में उसने काबू कर लिया ना। आप कोर्ट केस में आओ तो 1 करोड़ और ब्याज बोला जाएगा, फैसला भी नहीं होगा कोर्ट में। तो ये जो है, इसलिए समझना है कि ये कर्मों का हिसाब किताब है। हमारे विचार इसी कारण से ज्यादा चलते हैं, जो पास्ट में बीत गया वही हमारा सबकॉन्शियस उसी से भरा रहता है। तो ये जो हमें, ये है जो हुआ अच्छा हुआ। और अभी क्या हो रहा है, जो इसको फुल स्टॉप लगा देता है, जो हुआ अच्छा हुआ, वही अशरीरी आत्मा बन के अशरीरी बाप को याद कर सकता है। जो इस पास्ट की बात को फुल स्टॉप नहीं लगा सकता है, अर्थात जिसने बाप से सर्व संबंध की अनुभूति नहीं की है, अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनाए, वही पास्ट की बात को, पास्ट अभी तक जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा सकता है और वो फिर बिंदी बन के बिंदी बाप से याद कर सकता है, विक्रम विनाश कर सकता है। और जो अपने विक्रम विनाश करने के प्रोसेस में लगातार लगा रहता है, उसको अपना भविष्य दिखाई देता है। क्या? मैं कल फरिश्ता बनूंगा, देवता, जो भविष्य के नजारे दिखाई देते हैं, उसे अपना फरिश्ता स्वरूप दिखाई देता है, उसे अपना देवता स्वरूप दिखाई देता है, सत्यों की सीन सिंधियां नजर आती हैं, और क्या होता है, उसके खुशी के घुंघरू पहन के वो नाचता ही रहता है, है ना? नहीं, ठीक है, पक्का? तो ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो ये जो है फरिश्ता, तो बेहद की बुद्धि वाले, है ना? ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि में बेहद है। अब ये बार बार चेक करने की आवश्यकता है, क्या मुझे बार बार देह के संबंध याद आते हैं, अपनी देह याद आती है बार बार? केयर करना अलग बात है, किंतु बार बार देह पे ही संकल्प चलता रहे, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा ये कैसा है, बाबा ने कहा फैशन, है ना, कल की मुरली में था, है ना? तो फैशन या हम ऐसा कुछ करते हैं तो वो नहीं है ना, देह भान देह अभिमान नहीं, देह के संबंध संपर्क का भान नहीं, मुझे माँ याद आती रहे बार बार, कभी कोई भाई याद आता रहे, कभी कोई दोस्त याद आता, नहीं है ना? वो नहीं, बाबा याद आए ना, मेरा फोन उठाया, खाली बैठा हूं, चलो उसको फोन करूं, उसको व्हाट्सएप, अरे बाबा को फोन करो ना, बाबा को व्हाट्सएप भेजो ना, बाबा का व्हाट्सएप नंबर बताया आपको है? 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, अभी तक जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है? तो बाबा को फोन हो जाता है ना, मतलब पास्ट को अभी तक जो बीता फुल स्टॉप लगा दो, श्री बन गया श्री बाप से कंबाइंड हो जाओ, बाबा से बातचीत होनी शुरू हो जाती है ना, दिखाई भी देना शुरू हो जाता है बाबा, है ना? ऐसा महसूस होने लगता है, रू रिया चलने लगती है, तो बाबा से बात करो ना, है ना? तो ये हमें ध्यान करने का, तो बेहद की बुद्धि वाले, इससे पवित्रता आती जाती है। मैं इस पर बाद में आता हूं। तो ये है बेहद, इसको कहते अगर मेरे अंदर देखे संबंध संपर्क देखे पदार्थ याद आते हैं, जब कभी कभी क्रोध कर लेता हूं तो उसमें क्या हूं, ब्राह्मणों के मनुष्य हूं, बताओ। लोभ पैदा होता है, ब्राह्मण है मनुष्य है, अहंकार आता है थोड़ा सा, मनुष्य है ब्राह्मण है मनुष्य, तो मुझे मनुष्य मना मन के वश में, मन राजा है, ब्राह्मण मना बेहद की बुद्धि वाले, फरिश्ता कौन, फरिश्ता कौन, फरिश्ता माना बेहद की बुद्धि और मन वाले, जिसने इस बेहद की बुद्धि को यूज करके अपने मन को मन मनाभाव कर दिया है, ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द छुपा हुआ है, बेहद की बुद्धि से मन मनाभाव होने वाले, मन मनाभाव से मध्याजीव होने वाले, अर्थात मन के हर विचार में, हर विचार मन के चार एस्पेक्ट हैं, उसे इंग्लिश में टीम कहते हैं, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, विचार भावना वृत्ति और स्मृति। क्या फर्क है इसमें विचार और भावना में, जो विचार को हम गहराई से संबंध से करते हैं और बार बार करते हैं, संबंध में तो बार बार विचार आता है ना, वही विचार गहराई से करते हैं। अगर मैं बाबा को, आज बाबा की मुरली थी, क्या थी, है ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति ना, तो अगर मैं जैसे बाबा ने आज कहा तपस्या का फाउंडेशन बेहद की वैराग्य वृत्ति, एक नामी है ना, एकाग्रता है ना, और एकांतवासी, और क्या था, एकाग्रता है ना, एक रस स्थिति और वैश्विक इकोनॉमी है ना। तो आज बाबा ने कहा बच्चे ऐसा बनना है तुम्हें, तो मैं बाबा को उस लगन से याद कर रहा हूं, उसको बाबा की बात को मुझे अंदर, मैं उसी वही विचार में अंदर चल रहा है बार बार, संबंध से, हर संबंध से बाबा को बोल रहा हूं, मां के संबंध से बाबा कह रहा है बच्चे एक नामी हो जाओ, बच्चे एकाग्रता पैदा कर लो, बच्चे मेरे साथ ही रहो ना, मेरे अंत में आ जाओ ना, मेरे पास आ जाओ ना, है ना, बच्चे एक रस हो जाओ ना मेरे पास, बार बार इधर क्यों भटकते हो, व्यर्थ क्यों सोचते हो, है ना। तो बाबा जो उसके उसी लगन से मैं उसको लगा हुआ वहां पे, तो क्या होगा, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा, बाबा के बारे में सोच रहा हूं तो मेरे वाइब्रेशन, मेरे विचार क्या हो जाएंगे, भावना में कन्वर्ट हो गए, जो विचार बार बार गहराई से करते हैं वो भावना बन जाता है, और भावना से वाइब्रेशन निकलते, तो मेरे वाइब्रेशन कहां जाएंगे, मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जाएंगे, और बाबा कहता है जब तुम मुझे याद करते हो सच्ची दिल से तो मैं तुम्हें हजार गुना याद करता हूं, तो बाबा के हजार गुना वाइब्रेशन मेरे पास आएंगे, नहीं तो बाबा क्या बन गया, हजार गुना, ये एक गुना ऊपर हजार कितना हो गया, छत्र छाया बन गई, नहीं बन गई, तो अब बाबा से कैचिंग पावर टचिंग पावर होगी, नहीं होगी, नहीं होगी मेरी, लगातार क्या बन गई, कैचिंग पावर टचिंग पावर। अब क्या हुआ, अब मैं इसी भावना में खोया रहता हूं, कभी माँ के रूप में, कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सदगुरु के रूप में, टीचर के रूप में, माँ के रूप में बाबा हमको दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट देता है, टीचर के रूप में हमको त्रिनेत्री बना देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना देता है, सुदर्शन चक्रधारी बना देता है, सदगुरु के रूप में हमको त्रिलोकी नाथ बना देता है, गति सदगति मतलब 63 दिन के पवित्र विनाश करा के हमको मुक्ति धाम और सुखधाम में पहुंचा देता है, अभी हमको अनुभूति करा देता है, बंधु के रूप में क्या करता है, बड़ा भाई के रूप में सारा लौकिक अलौकिक बोझ ले लेता है, सखा के रूप में जो भी तुमसे गलतियां होंगी सूक्ष्म में कभी जाने अनजाने वो सारी बात बता के हल्के हो जाते हैं, साजन के रूप में क्या करता है बाबा, साजन का क्या काम होता है बताओ, साजन का काम सजाना है ना, साजन क्या करता है, कपड़े लाएगा, गहने लाएगा, है ना, और क्या लाता है, जो भी चाहिए ना, पत्नी को चाहिए ना उसके लाता है ना, तो बाबा क्या करता है, साजन के रूप में हमको दैवी गुणों से सजा देता है, सर्जन के रूप में क्या करता है, सर्जन के रूप में हमारी जो कमियां है ना, कमी कमजोर ऑपरेशन करके निकालता रहता है, जो अंदर कीड़े हैं ना, काम क्रोध लोभ अहंकार के, उनके थोड़े बाल बच्चे भी हैं, उनको निकालता रहता है, फिर भी आ जाते हैं, फिर निकालता है फिर आ जाते हैं, और लगा रहता है, पर बाबा भी हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, वो निकालता रहता है ना, और बच्चे के रूप में जब बाबा से 8 संबंध की अनुभूति अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं तो बाबा फिर हमारा बच्चा बन जाता है, राइट। तो ये जो है, तो ये जब हम करते हैं ना, तो संकल्प, तो हमारा संकल्प भावना बना, भावना से वाइब्रेशन, और जब उन्हीं भावनाओं में रहता है तो ये सर्कल पूरा हो जाता है। देखिए संकल्प सिंगल बिंदु, बार बार 20 बार किया, भावना बन गई और उसी में रहा, वही विचार चलता रहा मेरे अंदर, तो सर्कल पूरा हो गया, वृत्त बन गया। इसको बोलते हैं वृत्ति। अब मेरे मन में क्या घूम रहा है? बाबा ही घूम रहा है। आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, मेरा बाबा, यही साज अंदर बज रहा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा आपने मुझे कैसे क्या बना दिया, अंदर यही बजे जा रहा है सारा दिन, है ना। आज का वरदान ही अंदर बजे जा रहा है ना, यथार्थ याद की विधि द्वारा क्या बनना है, अंदर बज रहा है ना। सर्वशक्तिमान कैसे बने, कौन बनेगा सर्वशक्तिमान, वो अंदर बज रहा है ना, सारा दिन से बज ही रहा है, सुबह से बज रहा है, 3:30 से जब से उठे बज रहा है अंदर से, तो क्या हो गया, वृत्ति बन गई, सर्कल पूरा हो गया, वृत्ति बनी, दृष्टि बदल गई। अब मेरे को सब क्या नजर आ रहे हैं, क्या नजर आएंगे, सबके सब आत्माएं नजर आएंगी, सबके सब फरिश्ते नजर आएंगे, है ना। दृष्टि से वृत्ति बदली और वृत्ति से दृष्टि से वायुमंडल बदल गया, आभा मंडल, जैसे कहते प्रभा मंडल, आभा मंडल माना औरा, औरा माना मेरे आसपास वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्ति की शक्तियां जमा हो गई। मुझे याद आता है जब एक बार जब बाबा ने मुझे बुलाया, बाबा तो मेरे को हर बार बुलाता था, हर साल जब दिल वालों से मिलता था ना बाबा, तो बाबा कहते थे सभा में वो डॉक्टर कहां पर है, तो मैं सामने आ जाता था, पीछे होता थोड़ा सा, पीछे खड़ा तो आगे आ जाता था, और बाबा मेरी तरफ देखता था। तो मुझे याद है पहली बार जब 99 में जब बाबा ने मुझे बुलाया ना कि कहां पर है डॉक्टर, कहां पे है, तो मैं आगे को आया और बाबा मुझे देख रहा है, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे बाबा स्टेज पे था, डायमंड हॉल के स्टेज पे, और मुझे लगा हॉल में सिर्फ मैं हूं और एक बाबा है बस, और कोई नहीं है, है ना। पूरा हॉल में 20,000 लोग बैठे थे और मैं हूं और बाबा, बस दो ही लग रहा है, और बाबा के सामने जैसे लग रहा बाबा मुझे जैसे, मतलब इतना मेरे को वो क्षण याद है बाबा से कि इतना बेहद का लग रहा था, इतना मतलब मैं खो गया, इतना खो गया। और थोड़ी देर में मेरे को डांस करने का, मैं डांस करना आता नहीं है किंतु मेरे मन में थी दिल कभी मैं बाबा के सामने डांस करूं, तो मैंने स्थूल में डांस नहीं किया किंतु मैंने एक बार वहां पे मुझे ऐसे फील हुआ मेरे को कि जैसे बाबा मेरे मन की इच्छा थी कि बाबा के सामने डांस करूं कभी, तो बाबा के सामने मैंने डांस किया। एक बड़ी स्टेज थी, बहुत बड़ी, वो जिससे मैं डायमंड हॉल की स्टेज नहीं थी, कोई और स्टेज थी, तो मैं बाबा के सामने डांस कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे डांस कर रहा हूं, ऐसे घूम घूम के ना, ऐसे ऐसे करके ऊपर, ऐसे नहीं, वो होता है गोल गोल, एक आसमान, एक पैर जमीन पर, एक पैर आसमान पर, इस तरह से घूम घूम के। तो आज भी मैं भूलता नहीं हूं, तो जब भी मुझे बाबा बुलाता था, स्टेज पे भी कई बार बुलाया, क्योंकि जब जब बाबा मुझे कहता था डॉक्टर डॉक्टर आगे आ जाओ, आगे बुलाता था, तो मुझे तभी ऐसी फीलिंग आती थी बाबा के साथ, वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। आज आपकी मीटिंग है ना बाबा के साथ शाम को ना, बाबा तो हमेशा ही अवेक था, तब भी अवेक था, अब भी अवेक है ना बाबा, तो शिव बाबा तो पहले ही अवेक था, परम धाम में था, आता है थोड़ी देर के लिए, तब भी अवेक ही रहता है और अब भी अवेक है ना। तो आज शाम को याद रखना, तो बाबा जिसकी दिल में बाबा है ना, उसको बाबा दिखाई देता है, जिसकी दिल में कोई और है ना, उसको बाबा दिखाई नहीं देता है ना। तो इसलिए दिल को पहले सच्चा साफ बना लेना है ना, बाबा को आज मिलना है ना, आज बाबा की पधरामणि होने वाली है इस हॉल में है ना, तो पहले दिल को सच्चा साफ, सबको कान पकड़ के बाहर निकाल देना, माँ को बाप को, पहले तो अपने देह को बाहर निकालना, माँ को बाप को, पति को, पत्नी को, बच्चों को कान पकड़ पकड़ के बाहर निकालना, यहां से निकलो, कमरा खाली करो, शाम को खाली चाहिए ना, नहीं चाहिए, कोई बैठा होगा तो बाबा आएगा नहीं, सुना, मकान को भी निकाल देना, कार को भी निकाल देना, बैंक बैलेंस को भी निकालना, अरे यहां नहीं रखो ना, बाहर रखो ना, तुम घर में रहो किंतु ये थोड़ा ना यहां बैठोगे, कितना गंदगी कर देते हैं यहां पर, सोने भी नहीं देते नहीं, दिल ये वाला दिल नहीं, ये दिल होता ना आत्मा का दिल, सबको निकाल देना, फिर बाबा का ऐसा महसूस होगा, बाबा सब जैसे मुझे महसूस होता है ऐसा आपको भी महसूस होगा, ठीक है, जहां भी बैठे वहीं महसूस होगा। तो ऐसी स्थिति बन जाती है ना, तो बेहद की बुद्धि से बेहद का मन तो वृत्ति बनी, संकल्प भावना वृत्ति बन गई ना, वैसी दृष्टि बन गई, मुझे दुनिया वैसी दिखाई देती है ना। वह है ना गीता, ना गीत था एक फिल्म का, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, नहीं ना, तो दीवाना होना चाहिए ना, है ना, तो दीवानगी होनी चाहिए ना, दिखाई देना चाहिए ब्राह्मण है, नशे में चलता है, वैसा नशा नहीं, रूहानी नशा है ना, ऐसा नशा होना चाहिए ना, चले सड़क पे तो कहीं पे भी चले तो पता लगे दूर से ब्राह्मण है, मरा मरा नहीं, एकदम जागृत नशे में, ऐसी स्थिति ना, तो ऐसी जब ऐसी वृत्ति बन जाएगी ना, वृत्ति दृष्टि ऐसा वायुमंडल बन जाएगा ना, उस वायुमंडल में फिर आप रहोगे ना हमेशा। तो मेरा वायुमंडल कहां तक बन जाता है, मेरा बाबा है ऊपर, तो मेरी मेरी भावना में बाबा उसी उसी वृत्त में आ गया ना। अब मेरा वायुमंडल कहां तक चला गया, सूक्ष्म वतन तक, है ना, सूक्ष्म वतन तक मेरा वायुमंडल चला गया। अब उसके अंदर मैं और बाबा दोनों ही रहते हैं उस कमरे में, कमरा बन गया नहीं बन गया, तो उसी कमरे में रहते हैं बस हम, है ना, मैं और बाबा, नहीं तो यही सूक्ष्म वतन है ना, नहीं सूक्ष्म वतन है ना, प्यार का वतन बन गया ना, प्यार की दुनिया बन गई ना, तो उसमें मुझे नजर आता, और मेरे कैसे मुझे फीलिंग आती है, कैसे फीलिंग आती है, ये गुणों की पवित्रता की, शांति की, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का, सच्चे प्रेम का सागर है, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर है, आठों शक्तियों का पावर हाउस है, तो वो शक्तियां मेरे अंदर मुझे परसीव होती हैं, तो मेरे बिलीफ सिस्टम बदल गए। पहले कहते थे शुक्रवार की दशा है, शनि की दशा है, राहु की दशा है, अभी कौन सी दशा हो गई, सारी दशा ही बदल गई ना, क्योंकि वो मेरा मेरा शरीर की दशा थी ना, मैं तो शरीर रह रहा ही नहीं अभी, अभी तो मैं मेरा नामकरण संस्कार ही अलग हो गया, अभी तो कौन सी दशा आ गई, शिव बाबा की दशा आ गई, नहीं तो वहां तो कोई भूत, अगर भूत हो भी, अगर कोई बाई चांस कोई भूत की दशा भी हो तो क्या होगा, वो तो बेचारा गया ना, उसका तो काम पूरा हो गया, नहीं तो ऐसा अंदर से ऐसी फिर बिलीफ सिस्टम बन, आस्था बन गई, बाबा हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, हर कार्य में मेरे साथ है। और जब ऐसा बन गया तो मेरे अभी स्मृति रिकॉर्ड हो गई, मेरी पहले स्मृति क्या रिकॉर्ड अंदर क्या थी, ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, क्या रिकॉर्ड था, मैं ये देह, सतीश गुप्ता डॉक्टर आर्ट स्पेशलिस्ट, है ना, ये रिकॉर्ड था, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वो कैसा, वो कैसा, वो कैसी, यही रिकॉर्डिंग थी ना पहले, अभी क्या रिकॉर्डिंग बदल रही है, स्मृति बदल रही है, वो स्मृति के आधार से फिर दिखाई देता है, सुनाई देता है, बोलते हैं, खाते पीते व्यवहार करते हैं, वो फिर कर्म बनते हैं, और कर्म बनते तो क्या बनते हैं, कर्म बनने से हमारे क्या होती है, संस्कार बनते हैं, राइट। तो ऐसे तो बेहद की बुद्धि वाले को ब्राह्मण कहते हैं, और बेहद के मन वाले को फरिश्ता कहते हैं, और बेहद के संस्कार वाले को क्या कहते हैं, देवता कहते हैं, राइट। तो बन गए नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, और जिसकी बेहद की बुद्धि मन संस्कार तीनों हो गए वो बन गए देवता। और जब हम जाएंगे तो क्या होगा, जब तीनों चीजें भरपूर हो गई, सतो प्रधान हो गई, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, तो सातों गुणों से भरपूर हो, अब जो है बीज, अब बीज रूप अवस्था आ गई, जब मन बुद्धि संस्कार तीनों हो जाए ना, तो अब हम बीज रूप बन जाएंगे, बीज रूप बनके, बीज रूप बनके, बीज रूप बनके, बीज रूप बाप के साथ वापिस साथी बन के घर जाएंगे। साथी कैसा होता है, समान होता है, जो समान होता है वही समीप बैठ सकता है ना, समान नहीं हो समीप, बन समीप बैठ पाएंगे, बाबा सागर है पवित्रता का, मैं मास्टर पवित्रता का सागर बनूं तो साथ बैठूंगा ना, जो तो मेरी थोड़ी गंदगी होगी, थोड़ी सी भी गंदगी, किसी के प्रति अटैचमेंट थोड़ी सी भी है तो क्या होगा, अपने प्रति भी अटैचमेंट है, अपनी भी बुद्धि पे थोड़ा सा घमंड है तो भी क्या है, बाबा के साथ नहीं बैठ सकते, है ना। तो ये हमें देखना है। अब मैं आता हूं इस पे, ये तो अभी ये बात क्लियर होगी ना आपको। अब एक बात और लेते हैं, चलो अब 36 गुणों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ना। अब गुण कैसे आते हैं, आपने देखा हो ना, कलर जेट प्रिंटर होता है ना, कलर इंक जेट प्रिंटर होता है, उसमें चार कलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेड, ब्लू और येलो और एक ब्लैक होता है, ये चार रंग होते हैं, और उसके अंदर एक जेट होता है जो प्रिंट करता है ना, हम जो चीज की कमांड देते हैं उसमें 50 रंग चाहिए फोटो में, उसमें चार है, वो 50 रंग बना देता है, उसमें से चार रंग से मिल मिलकर भिन्न भिन्न देशों में वो 4 से 50 रंग की फोटो बन जाती है, नहीं कैसे बनती है। तो अगर क्योंकि मेरे पास अभी सातों गुण भरपूर नहीं है, कम है ना, क्योंकि मनुष्य आत्मा तो तमो प्रधान है, अब मैं ब्राह्मण बनके उसको करंट को खींच रहा हूं, सातों गुणों खींच रहा हूं, किंतु अभी परफेक्ट नहीं हुआ, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा जितनी बढ़ती जाएगी उतना मैं क्या होता जाऊंगा, ये चार मेरे पिलर्स हैं, है ना, और चार नियम है ब्राह्मणों के, नियम कौन से हैं, चार नियम है, कौन कौन से? सच्चा ब्राह्मण वो जिस कभी अमृत वेला मिस ना करे, पावरफुल अमृत वेला, बीजरू बन के बीजरू बाप से कंबाइंड रहे, मुरली बाबा की मुरली, उसने सुबह कभी मुरली मिस ना करे। मेरा नियम है, जब से मैं दिल्ली में था, जब एम्स में था, जब दिन से मुझे पता लगा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कैसे आया हुआ है, उस दिन से आज तक 37 साल हो गए, मैंने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। चाहे मैं प्लेन में हूं, चाहे ट्रेन में हूं, चाहे बीमार भी हुआ थोड़ी देर, तब भी मैंने कभी अमृत वेला मुरली मिस नहीं किया। बुखार था 104, तो भी मैंने अमृत वेला किया, है ना, मुरली। भले मेरा अमृत वेला लगा नहीं बुखार में, तेज बुखार, तो भी अभी जब कोविड हुआ था पीछे ना, तो इतना तेज बुखार था, सिर में दर्द था बड़ा जोर से, तो भी मैंने किया, जरूर बैठा, जरूर कुर्सी पे बैठ के किया, है ना, तबीयत ठीक नहीं तो भी मैंने किया, तो मुरली जरूर पढ़ी, है ना। तो मुरली जरूर, मतलब बिना मुरली पढ़े आत्मा का स्नान है अमृत वेला, मुरली है आत्मा का भोजन, और उसको लेने के बाद ही शरीर मुख में कुछ डालना, पानी पी लेते हैं उसके पहले, क्योंकि खाना तभी खाते जब पहले आत्मा का भोजन मिल जाए आत्मा को, ठीक है, पहले ड्राइवर को भोजन, फिर कार में पेट्रोल, है ना, ये कार है ना, फिर बाद में उसमें डालने का, पक्का ऐसा नियम बनाना चाहिए। आज से बनाओगे? आप दिल्ली वाले हैं, मैं भी दिल्ली वाला हूं, है ना, तो मैं चाहता हूं सभी दिल्ली वाले ऐसे बने, नहीं कैसे बने, अमृत वेला पहले करो, कुछ भी हो जाए, मकान भी टूट जाए तो टूटे मकान पे बैठ के करो, ठीक है ना, और मुरली रोज, उसके बाद ही मुख में कुछ डालो, और फिर सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन अटेंशन, और सोने के पहले वेंटिलेशन, सच्चाई से। तो चार नियम और चार मर्यादा, अगर ये हम नियम निभा लें तो क्या होगा, अब अगर मैं निरंतर बाप से कंबाइंड रहना सीख जाऊं, जैसे मैंने अभी अफसर थोड़ी देर पहले बात की, 8 के 9 के 9 संबंध की अथॉरिटी बन जाए, तो क्या होता है, बाबा से निरंतर कंबाइंड रहेंगे तो 8 7 एनर्जी हमारे अंदर आती रहेंगी, और फिर हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें, इंक जेट बताया ना, जेट होता है ना, जेट बिंदु में से निकलना पड़ेगा, वो सातों एनर्जी को, सातों गुणों को, तो वो दैवी हर कर्म में फिर दैवी गुण बनते जाएंगे। पहला गुण है सत्यता, सातों गुणों के मिश्रण से बनते हैं दैवी गुण, राइट, सत्यता। सत्यता में ज्ञान भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए, शांति भी चाहिए, सच्चा प्रेम भी चाहिए, अत्यंत सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, और आठों शक्ति भी चाहिए, तब सत्यता आती है। बाबा ने जो परिभाषा दी सत्यता की, परिभाषा क्या दी है मुरली में, ये 70s की मुरली है, उसमें दी है परिभाषा। बाबा ने कहा सत्यता माना अपने अनादि ज्योति बिंदु, अपने सत्य स्वरूप माना अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में स्थित होकर हर संकल्प बोल कर्म करना, संबंध संपर्क में आना और स्वप्न में आना, यह सत्यता है। क्या है सत्यता? अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम वाला और आदि देवी देवता स्वरूप माना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म स्वरूप को इमर्ज करो बुद्धि में, और तब स्वतः सोचो, तब देखो, पढ़ो, बोलो, खाओ, सुनो, पियो, चलो, कोई भी कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, तो अपने हमेशा अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करो, राइट, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल व कर्म से टच भी ना करना, राइट, ना भोजन को, ना किसी चीज को, किसी बुराई को भी टच नहीं करना, यह सत्यता की, यह सत्ययुग का पहला गुण है, दैवी गुण है सत्यता, राइट। यह टेंशन रखना कैसे आएगा, जब बाप से कंबाइंड रहोगे हर संबंध से, तो ऑटोमेटिक सत्यता, ये हम रोज इसका आजकल इसका अभ्यास करते हैं, 36 गुण रोज चेक करते हैं, मेरे अंदर कितने आ गए, सारे दिन में कितना अभ्यास किया मैंने, सत्यता। दूसरा, जब सत्यता का अभ्यास करोगे इससे ऑटोमेटिक पवित्रता आएगी। पवित्रता क्या है? अपने सत्य स्वरूप अर्थात अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके, और फिर दूसरे के भी जिसके संबंध संपर्क में आ रहे हो, चाहे आपका पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ बाप है, चाहे भाई बहन है, चाहे बॉस है, चाहे नौकर चाकर है, चाहे घर की आया है, कोई भी है, पीएन है, किसी से भी संबंध संपर्क में आ रहे हो, तो उसके भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि सत्व प्रधान स्वरूप, मैं देवी देवता स्वरूप नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है वो द्वापर में आने वाली, पर आएगा तो सत्व प्रधान आएगा, नहीं जब भी आएगी द्वापर में, कलयुग में भी आएगी सत्व प्रधान स्वरूप में आएगी, तो सत्व प्रधान स्वरूप को इमर्ज करके उससे व्यवहार करो, सत्य स्वरूप में व्यवहार करो। सत्य स्वरूप माना ज्ञान, ज्ञानयुक्त माना सत्य की समझ से व्यवहार करो, पवित्रता से व्यवहार करो, शांति से व्यवहार करो, सच्चे प्रेम से व्यवहार करो, अतिंद्र सुख आनंद में व्यवहार करो, आठों शक्तियों से भरपूर होकर व्यवहार करो। इसको बोलते हैं पवित्रता, राइट। तो ये प्रैक्टिस, एक एक गुण की प्रैक्टिस करते जाओ, सत्यता होगी तो पवित्रता आएगी, और जब पवित्रता होगी तो निर्भयता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तीसरा गुण निर्भयता, अपने आप आएगा। निर्भयता क्या है मेरे समझता हूं, मेरे को ना 10 मिनट और लगेंगे, लू 10 मिनट या छोड़ दू? चलो अच्छा सुनते हैं जी, क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन आंसर की तो इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती, नहीं तो आप पूछना, बाद में पूछ लेना, कोई बात मैं आपके साथ ही हूं, अगर आपको टाइम है तो मैं 1 बजे तक भी बैठूंगा, ठीक है। पर मैं आपको ये बता, ये अभी इस गुणों को मैं पूरा कर देता हूं। तो पवित्रता आ गई, फिर निर्भयता। निर्भयता माना जब आपके अंदर सत्यता और पवित्रता आ जाती है तो बुद्धि रूपी आंख, आत्मा की दो आंखें हैं बुद्धि और मन, तो बुद्धि रूपी आंख आपकी सदा कहां लगी रहती है? परम धाम में बाबा के साथ लगी रहती है, शांति धाम में बाबा से जुड़ी रहती है ना। आंख एक आंख कहां पर? सुख शांति धाम में बाबा के साथ जुड़ी रहती है हमेशा, और मन रूपी आंख अपने लक्ष्य पर लगी रहती है, सुख धाम में लगी रहती है, उस अपने दैवी स्वरूप पर, श्री कृष्ण जैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला स्वरूप पर। तो मेरी बुद्धि भी यानी मन भी यानी फिर क्या हुआ? डर कब होता है? जब मन बुद्धि मेरी दुनिया की चीज दुनिया में हो, देह में हो, कहीं और हो, तो ना तो निर्भयता आ गई। पर सत्यता और पवित्रता होगी तो होगा तीसरा गुण निर्भयता। निर्भयता आई तो सभ्यता आ जाती है। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता माना हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, सबके प्रति सिविलाइज्ड है ना। कोई कैसा भी हो, रावण भी हो जो आज के मूल्य में था, रावण भी हो, किसी ने आपको आतंकवादी भी हो, उसके प्रति भी सिविलाइज्ड। ये नहीं कि मैं उसके रोल को देखूं, ये आतंकवादी है, ये रावण है, नहीं, उसके साथ भी आत्मा भाई भाई का व्यवहार, सभ्यता। जब डर खत्म होगा तो ये ऐसा होगा, डर होगा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। पंजाब में जैसे आज के मुरली में था ना, जब पंजाब में जब आतंकवाद चल रहा था तो हमारी बहनें, है ना, मेरे को ऐसे कई बहनों से मैं मिला, उनके अनुभव सुने कि पंजाब में आतंकवादी सेंटर पे आ गया, है ना, 2-3 आतंकवादी आ गए, उसने कहा बहन जी बंद करो ये सब, अपना बंद करो सेंटर। उसने कहा भाई जी धूप में आए हो, पराजी, पंजाबी पराजी बोलते ना, पराजी तुसी धूप में आए हो तो आप बैठो, है ना, ठंडा ठंडा पानी छको, सर कई तो सरदारी होते ना, ठंडा पानी छको, छको कहते हैं ना, पियो, है ना, पानी पियो, मैं शिकंजी बना के लाती हूँ, है ना, शिकंजी पंजाबी में बोलता, पंजाबी शायद किसको समझ, कुछ सुना भी समझ में आए, तो वो मैं शिकंजी बना के लाती हूँ, है ना, साथ में टोली लेके आई और प्यार से उसको पिलाई, है ना, पिया उसने, दो तीन को पिलाया, और थोड़ी देर में पीने के बाद बोलते हैं बहन जी कोई तकलीफ हो ना, सानू दसना, है ना, सानू दसना असी वेखांगे, असी वेख लांगे, है ना, तो मतलब हम देख लेंगे, है ना। तो अभी क्या करने आया था, सेंटर बंद कराने, अभी क्या कर रहा है ना, निर्भयता ना। सत्यता है तो पवित्रता है, पवित्रता है तो निर्भयता है, निर्भयता है तो सभ्यता है ना। कोई कैसा भी हो, बुद्ध का आपने सुना, बुद्ध का और अंगुलीमाल का सुना ना, सुद का सुना हुआ ना, कहानी सुनी होगी, तो मतलब वो दृष्टि कि हमको डाकू से डरने लगे, किसी से सबके प्रति भाई भाई की वृत्ति, जब ऐसी स्थिति आती तो अंतर्मुक्ता आती है। जब तक सभ्यता नहीं आती अंतर्मुक्ता आ नहीं सकती है। ऐसे थ्योरेटिकल हम कह देते हैं अंतर्मुखी बन गए, बनते नहीं है। अंतर्मुखी माना क्या? चेहरे पर हमारे चेहरे पर क्या है? मस्तक है, आंखें, नाक, कान, मुख। चेहरे माना सोचना, मस्तक है ना सोचने के लिए, तो सोचना क्या सोचो? अंदर की सोचो, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा उससे क्या संबंध है, और ड्रामा, ये कर्म की फिलॉसफी क्या है, ये सोचो, अंदर सोचो, बाहर की मत सोचो, ये कौन नहीं, वो कौन नहीं, मैं कौन, मेरा कौन, एक एक संबंध को गहराई से महसूस करो, है ना। ये रूप मैंने देखा दादी का, बड़ी दादी का, है ना। सत्यता क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, निर्भयता क्या होती है। यज्ञ में ऐसे ऐसे बहुत मौके आए, दादी के साथ मेरा हर समय सुबह शाम दोनों टाइम मिलना होता था। दादी ने मुझे बोल के रखा था सुबह मुरली के बाद 5 मिनट तो आना, 15-20 मिनट आधा घंटा भी बैठना दादी के साथ रोज होता था, बड़ी दादी के साथ। कितने साल में ऐसे रहा, देखता था कैसे कैसे यज्ञ की प्रॉब्लम। शाम को भी कोई बात होती थी मुनि, मैंने तुरंत दीदी मेरे को तुरंत बुला लेती थी, गुप्ता जी दादी का देख लो एक बार आके देख लो, इतनी बड़ी मुझसे प्रॉब्लम आई है तो देखो उनकी तबीयत ऐसी ना हो कुछ ना हो, मेरे को अपने पास बुला के बैठा देती थी दादी के पास। तो मैं देखता दादी कैसे निर्भय होती थी एकदम, है ना, कभी डरती नहीं थी कुछ भी हो। कुछ बात हो बाबा बैठा है, बाबा बैठा, ये नहीं कि वकील को बुलाओ, पुलिस को नहीं, वकील को, ये कभी कुछ नहीं, नहीं कभी वकील को नहीं बुलाया, कुछ भी हुआ निर्भयता। सभ्यता, वो भाई है बहन है कोई भी है, गलत आदमी है बाहर का भी है। मुझे याद है एक बार माउंट आबू में पीछे कौन सा है, पांडव उनके पीछे कौन सा घर, कौन सा है वो त्रिमूर्ति भवन है ना, हाँ नाम नहीं लेता मैं, साथ में एक और घर था, उनका झगड़ा हो गया हमारे कुछ भाइयों से, पिटाई विटाई हुई, कुछ हो गई उनकी, हुआ हमारा ये पूरा माउंट आबू का रास्ता रोक दिया, चार भाई अरेस्ट हो गए, है ना, हमारे चार भाई अरेस्ट हो गए, कंप्लेन कर दी, सारा 3-4 दिन से बाजार बंद था, सारा कुछ बंद रहा। और क्या हुआ, जब दादी कहीं गई हुई थी बाहर, दादी आई और दादी ने आते ही मतलब कुछ भी नहीं, बैठी भी नहीं, तुरंत 2-3 जनों को साथ में लिया, मैं भी साथ में था, और दादी गई वहां पे उनके घर गई और दादी ने हाथ जोड़ के उसको ऐसे, दादी ऐसे से करती थी ना, मतलब बाबूजी बाबूजी कह के दादी ने बात की उनसे, छोटे थे वो, उनसे दादी से छोटे थे उम्र में, बाबूजी बच्चे है ना समझ हो गई, माफ कर दो बच्चों को, है ना, ऐसा उसने बोला, दादी ने इतना ही बोला, उन्होंने जाके कंप्लेन वापस ले ली, केस खत्म हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये होती सभ्यता, ये होती निर्भयता। दादी ने, लोगों ने कहा नहीं दादी वो ऐसा भाई है, ऐसा भाई है, ऐसा भाई ऐसा करेगा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, डरने की बात ही नहीं। निर्भयता क्या होती है, सत्यता क्या होती है, पवित्रता निर्भयता क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, और फिर अंतर्मुखता क्या होती है। आके नहीं 10 लोगों को बताए, नहीं अंतर्मुखता, फिर अंदर चली गई, आराम से आके बैठ गई, कोई बात नहीं, बाबा 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 बैठा है, बस इतना ही बोला, बाबा बैठा है, बाबा ने कर लिया। ये नहीं कि फिर आके बखान करे, 10 लोगों को बताते मैंने ये किया मैंने ये किया, नहीं, अंतर्मुखता, अंदर अंदर देख रही, आंखों से भी अंदर को देखना, अंदर देखना, इन आंखों से बाहर नहीं देखो, अंदर देखो, कानों से अंदर की सुनने वाला, आत्मा क्या कह रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है आत्मा को, प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना। नाक का मतलब सूंघना, क्या सूंघो, आत्मा को सूंघो, अंदर से आत्मा गुणों को सूंघो, कि बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है। अब गुण है तो बदबू आएगी और गुण है तो खुशबू आएगी, नहीं। और मुख से क्या करो, स्वाद लेना, किसका स्वाद लो, आत्मा के 7 गुणों का स्वाद अंदर से लो, और फिर इन गुणों को कंबाइन करके मुख से बोलो कुछ बोलना है तो इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। अंतर्मुखता की परिभाषा क्या है, अंतर्मुखता माना ऐसी आत्मा जो अंदर रहती है हमेशा, 1 सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाती है, मैं अशरीरी आत्मा हूं, और अशरीर मन के अशरीर भाव से कंबाइंड हो जाते हैं, अंदर का सुख लेती है, इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जिसने अंदर का सुख लिया हो ना, वो आत्मा बेहद की वैराग्य वृत्ति उसके अंदर आती है, सुना, नहीं तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, वैराग्य वैराग्य माना क्या, वैर और राग दोनों से मुक्त, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, है ना। जब बेहद की सारा इस देह और देह की दुनिया से पूरे से जिसने अंदर का सुख ले लिया ना, जिसके हाथ में 1 करोड़ रुपए आ गया ना, इस हाथ में 1 लाख है, वो कहे 1 लाख रुपए दे दो मुझे तो 1 लाख दे देंगे, मेरे हाथ में 1 रुपया है इसमें 1 लाख है, कोई कहे 1 लाख दे दो, दे सकते हैं क्या। जब अंदर का सुख मिल गया ना, तो फिर बाहर का तो बेकार सुख है, ले लो कोई बात। इसे बोलते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। इसके फिर 2 बच्चे हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति के, कौन कौन से, जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आती है तो अनासक्त वृत्ति आती है, इच्छा खत्म हो जाती है, मैं ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, मैं इतने देश विदेशों में गया, मेरे को बोलते हैं आपको वो महल दिखा के लाते हैं, वो दिखा के लाते हैं, मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, क्या देखना, पत्थर की दुनिया है, वही मनुष्य है, कोई तीन आंख वाले तो दिखाओ, है ना, कोई चार आंख वाले तो दिखाओ, वैसे तो सब जगह ऐसे मनुष्य है। मकान कैसे बने, सोने का मकान हो तो दिखा दो, है ना, तो सोने का कोई हो तो दिखा दो, नहीं वो महल दिखाएंगे, वो दिखा, मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे दिखना नहीं। वो कहते हैं अच्छा वहां पहुंच जाते जबरदस्ती, लेकिन नहीं वो देख के आओ देखो, मैं कहता मैं कार में सो जाता हूँ, आप जाओ देखो, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता बिल्कुल देखने का, क्या देखने की चीज है मुझे बताओ। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए। अब मेरे सामने कितने भी समोसे पकौड़े रखे हो मैं नहीं खाता हूं, क्योंकि दादी ने मुझे मना किया हुआ कि आप, मैं गुरुवार का भोग भी नहीं खाता हूं, दादी ने कहा दूसरों को कहते हो नहीं खाना तो खुद भी नहीं खाना, खुद भी खाओगे और फिर दूसरों क्या कहोगे, आप तो रोज गुलाब जामुन खाते हो, आप तो क्या होता है गुरुवार का भोग खाते हो, और उनको डायबिटीज है वो भी खाएंगे। तो मैंने कहा दादी मेरे को थोड़ी डायबिटीज है, उनको डायबिटीज है ना, नहीं पर आप खाओगे तो उनको, वो उनको मना कैसे करोगे। तो दादी मुझे ऐसा बोला, मैंने कहा दादी वो तो बाबा का भोग होता है ना, पर कौन सी मुरली में लिखा है भोग खाने से आपकी स्थिति बनती है, अभी तो ना एक मुरली में था ना, पीछे आया था ना, बाबा की याद करने से शक्ति बनेगी ना, भोग खाने से नहीं बनेगी। तो मेरे को तब अटेंशन आया, हाँ दादी, तो मतलब तब से मेरा ये मेरी 27 दिसंबर 1997 से मैंने भोग खाना छोड़ा, ठीक है, किस लिए, अपने लिए नहीं, किसके लिए, भाषण में जो बाबा को बच्चों उनको पेशेंट को कहते ना, वो कमिटमेंट मेरे अंदर आए, इसके लिए छोड़ा। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो अनासक्त वृत्ति आई, कुछ खाने की देखने की इच्छा खत्म, और जब अनासक्त वृत्ति आती तो उपराम वृत्ति होती है, उपराम है ना, हमारी वृत्ति ऊपर जाती है, नहीं तो ऊपर नहीं जाती, ऊपर जाती है क्या, आज खाने की चीज समोसा रखा है ऊपर कैसे जाएगी, है ना, गुलाब जामुन रखे हैं ऊपर कैसे जाएगी, जाएगी क्या, तब उपराम वृत्ति होती है ना? जब उपराम वृत्ति होती है तो क्या होता है, तब एकांतवासी बनते हैं, नहीं तो एकांतवासी बन सकता है आदमी, नहीं तो अकेले बैठते ही आदमी मोबाइल पे जाता है ना, इधर उधर फोन करने पे जाता है। एकांतवासी माना एक के अंत में खो जाना, एकांत क्या है, ज्ञान सागर के अंत में खो जाओ, ज्ञान सागर का अंत क्या है, आत्मा क्या है, बिंदी, बाप क्या है, बिंदी, और मेरा जो आत्मा परमात्मा संबंध क्या है, बिंदी, है ना, और ड्रामा क्या है, बिंदी, बिंदी लगाओ, बिंदी बन के बिंदी बाप को याद करो, भविष्य में बिंदी, बिंदी बन के बाप के साथ वापिस जाएंगे। तो ज्ञान सागर का अंत क्या है, बिंदी, पवित्रता का सागर का अंत क्या है बताओ, क्या है, हम सब आत्माएं बिंदी, एक बाप के बच्चे आपस में बिंदी बिंदी, भाई भाई, और बिंदी बन के वापिस गिर जाएंगे। पवित्रता का सागर का अंत हो गया, शांति के सागर का अंत क्या है, बिंदी, प्रेम के सागर का अंत क्या है, बिंदी, अतिंद्रिय सुख का सागर का अंत क्या है, वही बिंदी, आनंद का सागर का अंत क्या है, बिंदी, और सत्य को सत्य को प्रकृति शक्ति का सागर का अंत क्या है, बिंदी, है ना, विस्तार को सार मिलन शक्ति का अंत क्या है, बिंदी, समेटनी शक्ति का सागर का अंत क्या है, बिंदी, है ना, समेट, ऐसे जो सब का अंत क्या है, बिंदी। तो इस तरह से हर हर जो शक्ति जितने भी ना, सहन करने की शक्ति का सागर अंत क्या है, बिंदी, समाने की शक्ति का सागर का अंत क्या है, बिंदी, सामना करने की शक्ति का सागर का अंत क्या है, बिंदी, समेटने की शक्ति का सागर का अंत क्या है, बिंदी। तो जब बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइन होंगे ना, तो एकाग्रता आ जाएगी, एकाग्रता आ गई तो क्या, एक नामी आ गई, बिना एकाग्रता है एक नामी नहीं आती है। एक नामी माना कुछ भी हो जाए, हार्ट में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, आग लग जाए, किसको याद करोगे, फायर ब्रिगेड को बुलाओगे क्या, नहीं, एक को याद करो, बाबा हर चीज अपने आप करेगा, बाबा टच करेगा, बाबा अपने आप ही हार्ट का दर्द ठीक कर देगा, और अपने आप ही चाहे तो जोर से हवा चला के बरसात करके आग बुझा देगा, ठीक है, किसी को बुला देगा, है ना, टाइम हो गया बंद कर दो, हाँ हाँ, अच्छा बस मैं चलो ये एक एक, एक लाइन तो बता के अभी तो 36 गुण थे, 36 तो पूरे नहीं हुए ना, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये जो है विस्तार को सार्वजनिक शक्ति, ये बताया मैंने आपको, एक नामी, फिर व्यर्थ से एक नामी हो जाती है, जब एक नामी रहने लगती है तो व्यर्थ अपने आप ही खत्म हो जाता है, फिर एक मत बनते हैं, फिर एक रस बनते हैं, जब एक रस बनते हैं सरलता आती है, नाम सर खाली नाम बता देता हूं, सरलता आती है, सरलता आती है तो नम्रता आती है, नम्रता आती है तो दया भाव आता है। दया आती है तो रहम, दया आती, दया से तो दया आई, रहम माना कुछ करने की इच्छा पैदा हुई, करुणा, करुणा माना ऊपर से करंट लेके उसको देने शुरू कर देते हैं, फिर क्षमा, फिर क्षमा उस करंट की वाली स्थिति में, पावरफुल स्थिति में क्षमा, क्षमा कर देते हैं, फिर क्षमा के बाद क्या होता है, फिर उदारता आती है, गलतियों को समाने की ताकत आती है, फिर मधुरता आती है, मधुरता आती है तो धैर्यता आती है, धैर्यता आती है तो गंभीरता आती है, गंभीरता माना हम सीरियस होकर अपना काम में लग गए बाबा की याद में, और गंभीरता आती है तो रमणीकता आती है, रमणीकता आती है तो सहनशीलता आती है, सहनशीलता आती है दृढ़ता आती है, दृढ़ता आती है तो संतुष्टता आती है, संतुष्टता आती है तो हर्षित मुक्तता आती है, हर्षित मुक्तता आती है तब जाके सम्मान में रहकर सबको सम्मान देने लगते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो निमित्त भाव आता है, जब निमित्त भाव आता है तो निर्माण बन जाते हैं, निरहंकारी बन जाते हैं, निरहंकारी बन जाते हैं तो निर्माणता, तब कंस्ट्रक्टिव बनते हैं, तब निर्मल स्वभाव होता है, तब आज्ञाकारी बनते हैं, माना सदा पवित्र निरंतर योगी रहने लगते हैं, वफादार, फिर वफादार बनते हैं, वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर ईमानदारी आती है, ईमानदारी माना जो जैसा भी है, सुबह बाबा ने मुरली में कहा हम एक एक बात बाबा को बताते हैं, बाबा आज ये बात आपने कही ना मैंने फॉलो नहीं कर पाया, इतने परसेंट फॉलो की, अंदर बाहर सेम हो जाते हैं, और फिर जब ईमानदारी आती है तो फिर आती है फरमान बरदारी, बाबा का जो भी आज्ञा है उसको हम फॉलो करने लगते हैं, राइट। तो 36 गुण ऐसे हैं, और फिर हर गुण में 100% हो जाओ, संपूर्ण निर्विकारी बन जाओ, फिर मर्यादा आ जाती है, फिर अहिंसा परम धर्म हो जाते हैं। ओम शांति।